जी
तो आया था टॉपिक के बारे में कि अगर हम थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ देखें कि हाउ टू कनेक्ट, क्योंकि हम मुझे ये फील होता है कि हमारा जो अल्लाह ताला से जो कनेक्शन है
जी.
वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जैसे होना चाहिए. हम लोग रिचुअल्स की तरफ हमारा रुझान ज्यादा होता है विदाउट अंडरस्टैंडिंग.
जी नहीं, वो तो हमने 100% इस बात से एग्री किया था, और बल्कि शुरू में ये हमारी सारी एफर्ट इसी चीज़ की तरफ है ना कि मारिफत बढ़ती है तो रूहानियत और बाकी जितनी चीज़ें हैं सब खुद ब खुद पैदा होना शुरू हो जाती हैं. बल्कि मैं इसमें एक आपको सुनाऊँ एक दो बातें कि जो जहन में आती हैं कि जब भी आम तौर से यानी हम जैसे लोग जब उरफा को देखते हैं या उनके वाकयात सुनते हैं या ऐसे ऐसे अफराद पूरी जनरेशन में दो चार ही होते हैं, लेकिन जब हम उनके वाकयात सुनते हैं या उनके बारे में मालूमात हमें हासिल होती हैं तो हमें बड़ा एक अजीब सी फीलिंग आती है. हम समझते हैं कि उनके पास कोई बहुत स्पेशल रेसिपी है या उनके पास कोई ऐसे राज और असरार हैं कि जिनकी हमें कोई ख़बर नहीं है, कि जिसकी वजह से वो इन सारे मकामात को तय कर रहे हैं और हमें कुछ नहीं मिल रहा, जबकि हम भी दीनदार हैं और सब कुछ है. तो इन फैक्ट ऐसा कुछ भी नहीं है. यानी जैसे आयतुल्ला बहजत से किसी ने जाके पूछा, अक्सर एक सवाल होता है ना कि हर बुज़ुर्ग से दस्तूरुल अमल बताएं. इन्हें समझते हैं कि बहुत ख़ास उनके पास कोई चीज़ है कि क्या क्या है कि जिसको बस पढ़ूं और मैं बस तकर्रुब इलाही और आस्तारे पर्दे दरवाजे हड्डियाँ सब. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मफाती और तौज़ीउल मसाइल उठाई और उसको पकड़ा दी. तो ये दस्तूरुल अमल है, कर लो तुम भी पहुँच जाओगे. कोई ख़ास बात नहीं है इसमें, या यूं कह लें कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो बताना चाहिए ऊपर जाने के लिए और वो हमसे छुपा दी गई है. तो ये पता है होता क्या है, यानी इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारे पास जितने भी शेर हैं ना वो सब कावास के शेर हैं. या यूं कह लें कि हम पत्थर की मूर्ति बना के और उसको तवक्को रख रहे हैं कि ये चलती फिरती क्यों नहीं है. बेसिकली हम सिर्फ इबादत की एक शक्ल क्रिएट करते हैं, लेकिन उसके अंदर रूह डालने से, जान डालने से हम महरूम हैं या हम वो कैपेसिटी नहीं हासिल कर पाते. तो बेसिक चीज़ जो है ना वो ये नहीं है, कोई ख़ास चीज़ कुछ भी नहीं है. ये जो आप कर रहे हैं यही बहुत काफ़ी है. यानी मिसाल के तौर पर सबसे पहली स्टेज पर हराम से बचना, उसके बाद वाजिबात पर अमल करना, फिर कुछ मुस्तहबात पर आना, यही सब चीज़ें जो इंसान को ऊपर ले जाती हैं. लेकिन हो क्यों नहीं रहा, इसलिए नहीं हो रहा कि उसके अंदर जान नहीं है, रूह नहीं है. यानी वो जो हमारी इबादत का पैकर है वो रूह से खाली है, और उसी को रूहानियत कहते हैं हकीकतन. उसी को रूहानियत कहते हैं जी. मतलब मारिफत है वो भी, मैं भी थोड़ा सा बयान करता हूँ उसके लिए. बिल्कुल सही लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया, कनेक्शन टू अल्लाह. यानी कि बिल्कुल ये जो मिसाल मैं जैसे दे चुका हूँ कि आप अपने घर में ला के सारे अप्लाइंसेस रख दें, बल्ब लगा दें, सब लगा दें, कनेक्शन ना दें बिजली का, स्विच ऑन ना करें, तो वो सब चीज़ें अपनी जगह रह जाएंगी. ना टीवी में कोई तस्वीर और आवाज़ आएगी, ना बल्ब से रोशनी निकलेगी, ना कुछ होगा. और हम उसको देख देख के परेशान होते रहेंगे कि मैंने तो हर चीज़ अपनी जगह सही लगा दी, फिर इसको क्यों कुछ नहीं हो रहा. तो प्रॉब्लम ये है, मैंने पहले भी इस चीज़ को हाईलाइट किया था कि प्रॉब्लम हमारे पास वो नहीं है कि हमें इसका पता नहीं है कि हमें क्या करना है. यही नमाज है, यही रोज़ा है, यही हज जो खुम्स व ज़कात है, यही सारी चीज़ें हैं जो इंसान को ऊपर ले जाती हैं. यानी जो कुछ भी हमें कमाल तक पहुंचाने के लिए चाहिए वो हमारे हाथ में दे दिया गया है, वो हमसे छुपाया नहीं गया. सही है. तो ये है, जहाँ तक मेरी अकल जितना भी काम कर रही है वो यही है कि उसके अंदर रूहानियत डालना या रूह फूंकना जो है वो असल बात है, वो असल काम है. सही है. चलें, यानी कि ये मेरा ख्याल है कि इस बात से आप एग्री करेंगे कि हमारा प्रॉब्लम जो है वो ये नहीं है कि हमें पता नहीं है कि क्या करना है, बल्कि हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम जो कुछ कर रहे हैं उसमें जान और रूह नहीं आ पा रही है. तो इस वजह से इन्हें इस चीज की वजह से जो है ना हमें इन्हें बेसिकली होता क्या है कि हम ये कहते हैं कि अफला तो मेराजुल मोमिन, हमने ये पढ़ा कि नमाज जो है वो मोमिन की मेराज है, हमने पढ़ा कि अफला तो कुर्बान कुल्ले तकी कि नमाज जो है वो हर साहिब तकवा के लिए कुर्बत का वसीला है, कुर्बानी कुर्बानी यानी उस चीज़ को कहते हैं जो इंसान को कुर्बत अता करे, तो नमाज हर मुत्तकी के लिए बायस कुर्बत है, लेकिन हम नमाज़ें पढ़ रहे होते हैं और हमें कुछ मिलता ही नहीं है, ना हम कुर्बत महसूस करते हैं, मेराज का मतलब उरूज है ना, बुलंद होना, ना हमें कोई बुलंदी महसूस होती है ना हमें कोई कुर्बत महसूस होती है, तो हम क्या होते हैं, हमारे अंदर क्या कैफियत पैदा होना शुरू हो जाती है कि हम खुद ये सोचना शुरू कर देते हैं कि यार ये नमाज असली चीज़ नहीं है, कुछ और चाहिए। अरे मैं समझ में, यानी कि जैसे हुई कि आपको एक इंस्ट्रूमेंट या एक चीज़ दी जाए, डिवाइस दी जाए कि भाई इससे ये काम होगा, इससे ये काम निकलेगा, अब हम उसको लेके बैठे हैं वो काम ही नहीं हो पा रहा। असल में प्रॉब्लम हमारे साथ ये हो रही है कि हम रोज़ा रख रहे हैं और रोज़े के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम साहिब तकवा हो जाओ, साहिब तकवा होने के बारे में हम जो हैं इस बात को जान रहे हैं कि जो मुत्तकी होता है उसको खुदा की तरफ से इल्म हासिल होता है, जो मुत्तकी होता है वो इतना विजनरी होता है कि देखकर हक और बातिल को पहचान लेता है, जो मुत्तकी है उसके पास ये क्वालिटी होती है कि खुदा उसे कभी भी मुसीबतों के या शयातीन के हवाले नहीं करता बल्कि हमेशा उससे बाहर निकाल लेता है। यानी ये सब चीज़ें कुरान करीम की आयतों में मौजूद हैं तकवा के नतीजे में, हम देखते हैं हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। तो इस वजह से हम अपनी इबादत और अपने आमाल की तरफ से स्केप्टिकल होते चले जाते हैं, यानी बेसिकली हमारे अंदर ये ख्याल जड़ पकड़ना शुरू कर देता है कि यार ये नमाज है भी या नहीं, या इसका कोई फ़ायदा है भी या नहीं, या नमाज कोई और चीज़ है, मेरा ख्याल है रोज़ा कुछ और है। ठीक है, तो हमारे साथ मेरा ख्याल है शायद आप लोग एग्री करेंगे प्रॉब्लम ये हो रही है, जबकि हकीकतन रेसिपी इसके अलावा कुछ नहीं है कि जो हमको बता दी गई, वही जो मैंने आपको आयतुल्ला बैजात का जुमला सुनाया गया, तौज़ीउल मसाइल और मफातीउल जना, यानी तौज़ीउल मसाइल ये बताएगा कि भाई कैसे ज़िंदा रहो, मफातीउल जना वही आइम्मा की दुआएँ हैं जो तकर्रुब का वसीला है, जो खुदा से करीब करती हैं, जो खुदा की मारिफत अता करती हैं, दुआ और मुनाजात मासूमीन अलैहिस्सलाम, यही है दस्तूरुल अमल और इसके आगे कुछ नहीं है। तो बेसिकली हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम उस रूह को जो इलाही रूह है और जो हकीकतन रूहानियत है, सही है, रूहानियत का मतलब, बल्कि जो है अक्सर औकात मैं अर्ज़ करता रहता हूँ कि रूहानियत का मतलब वो ज़ाहिरी तौर से कुछ करामतें दिखाना नहीं है, यानी मुख्तलिफ किस्म के जैसे हम कहते हैं इल्मी ज़बान में खारिक़ आदत, खारिक़ आदत का मतलब आउट ऑफ द ऑर्डिनरी कुछ चीज़ें हम वो कर दें, जैसे मिसाल के तौर पर मैं किसी के बारे में कुछ मुस्तकबिल के बारे में बता दूँ, या किसी के कोई राज की बात बता दूँ कि हाँ भाई मुझे ये पता है वो पता है, मैं ये पेशेंट गोई कर सकता हूँ, या मैं ये कमाल दिखा सकता हूँ कि हाँ जी बड़े रूहानी इंसान है, इसको नहीं रूहानियत कहते, बल्कि रूहानियत का मतलब ही यही है कि इंसान खुदा से और अपने ऊपर वाले जो अवालिम हैं या वर्ल्ड्स हैं उनसे कितना कनेक्टेड है और उसका कितना असर हमारी ज़िंदगी में पाया जाता है, या हमारे जो थॉट प्रोसेस है वो कितना ज़्यादा खुदाई और इलाही है। ये जितना कुछ होता चला जाएगा रूहानियत है हमारे अंदर उतनी पैदा होती चली जाएगी, ठीक है, और फिर उसका असर आप कहाँ महसूस करेंगे, अपनी पूरी ज़िंदगी में, तब नमाज़ों की लज्जत आपको महसूस होगी, नमाज़ों की मानवियत आपको समझ में आएगी और इस किस्म के तमाम चीज़ें, यानी नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, इबादत, कि आप ख़ुद ऐसा महसूस करेंगे कि अब मेरी इबादत की क्वालिटी कुछ और हो गई है, जब वो रूहानियत यानी रूहानियत बेस्ड ऑन मारिफत, जब इंसान में वो नूर आता है, वो नूरानियत पैदा होती है, तो चीज़ यही है, काम यही है, ज़िंदगी यही है। ये नहीं है कि कोई ऐसी ख़ास बात है कि जो खुदा ने मुझसे और आपसे छुपा के रखी है, क्योंकि कुरान करीम में एक बिल्कुल वाज़ आयत में وما علی الغیب بالظنین، پیغمبر اکرم کی خصوصیت بیان کی گئی ہے کہ یہ غیب کی خبر بتانے میں بخیل نہیں ہے، کنجوس نہیں ہے پیغمبر ہمارا، یعنی جس کو ہم نے اپنی طرف سے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے، جو ہماری طرف سے تم کو میسج دے رہا ہے فار یور لائف، یہ بخیل نہیں ہے. بخیل کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک شخص جانتا ہے اور نہیں بتا رہا. تو پیغمبر کی خصوصیات میں سے قرآن کریم میں بیان کیا گیا کہ یہ پیغمبر ان میں سے نہیں ہے کہ جو جانے وہ بس، جیسے ہمارے ہوتا ہے نا کہ اگر کسی کو کوئی خاص بات پتہ چل گئی، یہی تو فرق ہے نبی اور غیر نبی میں، یہیں سے تو وہ الہی اور غیر الہی انسان پہچانے جاتے ہیں. کہ انبیاء اور ائمہ علیہ السلام کے پاس ایسا کوئی جذبہ نہیں ہے کہ میرے پاس اگر کوئی خاص بات ہے تو اس سے میں دوسروں کو محروم رکھوں اور جو خاص چیز میرے پاس ہے اس کے ذریعے سے ان پہ حکومت کروں، بلکہ انہوں نے جو جانتے تھے وہ ہمارے سامنے رکھ دیا ہے. مصیبت ہماری ہے جو اس کو سمجھ نہیں پاتے یا اس کی حقیقت کو درک نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے، تو بیسیکلی اسی لیے پھر معرفت کا سفر اختیار کرنا پڑتا ہے. مطلب معرفت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آگہی، شعور، شعور کی بلندی، انسان کا جو کہ جو وزڈم ہے، انسان کی انٹلیکٹ ہے، اس کو ڈیولپ کرنا. دیکھیں اس میں بھی میں آپ کے سامنے اب ایک سوال رکھتا ہوں، ابھی اس سے بھی نا بڑا مزیدار نتیجہ انشاءاللہ برآمد کریں گے. سوال یہ ہے کہ اگر مجھے معاشرے کو یا جتنے بھی مثال کے طور پر آپ علمی مراکز لے لیں، علمی مراکز ہمارے پاس دو ہیں، ایک حوزہ علمیہ مدرسہ ہے اور ایک یونیورسٹی اور دانشگاہ ہے. اگر ہم اس کو اسلامی اور روحانی بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ انہیں معاشرے کو ان جنرل، اور اگر ہم ان پرٹیکولر خاص طور سے اپنے مراکز علمی کو یعنی یونیورسٹیز اور مدارس کو روحانی اور اسلامی بنانا چاہتے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کس چیز پر بیس کرتا ہے؟
ہر علم کو جو کچھ ریسرچ ہے جو بھی دیکھ رہے ہیں اس کو خدا کی امبریلا کے اندر نیچے رکھ
کے دیکھنا. یعنی مثال کے طور پر آپ جب بھی یہ سوال کریں تو کہیں بھائی اس میں کیا ہے، جیسے ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے کہ کیا ہونا چاہیے، کہ یونیورسٹیز میں نماز کا ایک روم قائم ہونا چاہیے کہ جو نوجوان ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ وہاں پہ نماز جماعت قائم ہو، یا اس طریقے سے کہ جو لڑکے لڑکیاں عام طور سے ساتھ بیٹھتے ہیں ان کو الگ کرنا چاہیے، پردے کی پابندی ہونی چاہیے، یا آپ ایسی قسم کے شریعت کے چار چھ اور احکامات بتا دیں گے کہ نماز جماعت کا کوئی سسٹم کیجئے، پردے کی پابندی کیجئے، صحیح ہے، یا کوئی ایسے دینی لیکچرز وغیرہ شروع کر دیں. لیکن حقیقتاً ان میں سے کوئی چیز بھی اس کو اسلامی اور روحانی نہیں بناتی. اسلامی اور روحانی بنانے کے لیے جو چیز لازمی ہے وہ یہ کہ علم، نظریہ اور فلسفہ وہ اسلامی ہو. بات واضح ہو رہی؟ یعنی آپ یونیورسٹی میں جو کچھ پڑھا رہے ہیں، جو علم ہے، اس علم کو اسلامی اور روحانی اور الہی ہونا چاہیے. یونیورسٹی اس کے ذریعے سے اسلامی نہیں ہو جائے گی کہ وہاں پر آپ نے پردہ قائم کر دیا یا نماز جماعت کے سلسلے قائم کر دیے یا اس قسم کی اور دو چار چیزیں کر دیں، اس سے نہیں ہوگی. جو جی ہاں، دنیاوی علم، یعنی چاہے فزکس ہو، کیمسٹری ہو، میتھمیٹکس ہو، فلسفی ہو، اکنامکس ہو، کچھ بھی آپ پڑھا رہے ہیں، آپ جب تک اس علم کو روحانی اور اسلامی نہیں بنائیں گے وہ جگہ اسلامی نہیں ہوگی. بات واضح ہو رہی؟ یہی چیز مدرسے کے لیے بھی ہے. یعنی ایون جہاں پر دینی تعلیم دی جا رہی ہے، جب تک اس دینی تعلیم کو بھی الہی نہیں بنایا جائے گا، ایون وہ مدرسہ اسلامی تعلیم دینے کے باوجود غیر اسلامی ہو سکتا ہے. کہ جس کو امام خمینی نے ایک بہت اچھے طریقے سے بیان کیا تھا اس چیز کو، کہ پہلی آیت ہے نا، اقرا بسم ربک الذی خلق، انہوں نے کہا پڑھ لیکن اس میں رب کے ساتھ. تو انہوں نے کہا جو چیز بھی اس میں رب کو نکال کر پڑھی جاتی ہے وہ شرک اور نفاق ہے، حتیٰ کہ علوم دینیہ بھی. تو یہ حتیٰ کہ علوم دینیہ بھی اگر اس میں رب کے ہمراہ نہ پڑھے جائیں. صحیح مطلب کیا ہے کہ آپ فقی اصطلاحات رٹے جا رہے ہیں, آپ ساری چیزوں پر بحث کیے چلے جا رہے ہیں, لیکن وہ خدائی تصور ہی نہیں ہے ہمارے پاس.
جی
تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں, تو اسی کی تو مثال میں نے آپ کو دی نا کہ ہمارے ساتھ یہ تو پرابلم ہو رہی ہے کہ وہ ہمارے لیے ایک عمل یعنی ایک ایسا پیکر ہے کہ جو بے روح ہے, اور ہم اب اس بارے میں شک میں پڑ گئے ہیں کہ یار یہ نماز کا کوئی اثر ہوتا بھی ہے کہ نہیں. یعنی ہم ایکچولی ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ہم اس میں جان نہیں ڈال پا رہے. جان کیوں نہیں ڈال پا رہے؟ کہ ہمارے پاس وہ حقیقی روحانیت نہیں ہے. حقیقی روحانیت کیوں نہیں ہے؟ کہ ہم نے اپنے دل دماغ کو خدا کے لیے کھولا نہیں ہے. میں بھی اس کی بھی وضاحت کرتا ہوں کیونکہ یہ ہے, یہ کوسچن ہے کہ ہاؤ اٹ از پاسبل. ہاں کہ یہ جو بات ہے, یعنی یہ تو میں نے پہلی بات کی نا کہ بھائی اسلامی اگر آپ کو بنانا ہے معاشرے کو, درسگاہ کو, جامعہ کو, کسی بھی چیز کو, تو وہ خالی یہ اوپر کے فقہی چیزوں کو نافذ کرنے سے نہیں ہوتا کبھی بھی. یعنی معاشرہ اسلامی اس سے نہیں ہوتا کہ یہاں لوگ نماز پڑھنا شروع کر دیں. آپ دیکھیں سعودی عرب میں ہر ایک نماز پڑھ رہا ہے. صحیح ہے جی, مطلب ہے سب نماز پڑھ رہے ہیں. معاشرہ اس سے نہیں ہوتا کہ عورتیں جو ہیں وہ ٹائٹ قسم کا پردہ شروع کر دیں یا مرد لمبی لمبی داڑیاں رکھ لیں. نہیں, بلکہ یہ سب چیزیں بعد میں آتی ہیں اور حقیقتاً خود بخود ہونا چاہیے. اس کے لیے کسی کو تبلیغ اور تلقین کرنے کی ضرورت نہیں ہونا چاہیے. یعنی اگر واقعاً معاشرہ اسلامی ہے تو داڑھی, پردہ, نماز, روزہ, ارکان دین یہ خود بخود پیدا ہونے چاہیے, خود بخود انسان کو اس پر آنا چاہیے اپنی علم اور معرفت کی بنیاد پر. ٹھیک ہے, اچھا اب ہم اس پر آتے ہیں کہ ہاؤ ٹو امپلیمنٹ اٹ. یعنی جب ہم اس چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ نظریہ, فلسفہ اور علم اسلامی ہو اور روحانی ہو, تب چیزیں روحانی ہوتی ہیں, نہ کہ صرف اوپر اوپر سے آپ چیزوں یعنی ظاہری اقدامات کو اپلائی کر دیں. دیکھیں اس میں پہلی چیز کیا ہے کہ ہم اپنی توجہ اس بات پر کریں کہ پورے کا پورا عالم مخلوق ہے. میں اس کی تھوڑی وضاحت مجھے کرنی پڑے گی. آج کی سائنس میں سب سے اہم, مطلب سائنس کا جو ایک مین فوکس ہے اور وے آف تھنکنگ ہے وہ کیا ہے کہ وہ انہوں نے یہ ازیوم کر لیا ہے کہ یہ زندگی آلریڈی موجود ہے, زندگی کا نظام موجود ہے. اب اسے وہ کچھ بھی کہیں, وہ خودکار نظام ہے, آٹومیٹک ہے, بائی چانس ہے, کچھ بھی ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ سب موجود ہے. اب وہ یہ اس کے اصول کیا ہیں اس کو ایکسپلور کر رہے ہیں. اس کو کہا جاتا ہے طبیعت, یعنی ایکسپلورنگ دا فزیکل ورلڈ. ایکسپلورنگ دا فزیکل ورلڈ, جو علم اس طریقے سے آگے بڑھے گا وہ ہمیشہ غیر اسلامی علم ہوگا. ٹھیک ہے, بہت غور سے سنیے گا یہ چیزوں کو, یہ گہری باتیں اتنی سمپل نہیں ہیں. شروع ہمیشہ ہونا چاہیے کہ عالم مخلوق ہے اور اس کا خالق کون ہے اور اس کا خالق ہے. بات یہاں سے شروع ہونا چاہیے ہمیشہ, خالق سے. مطلب یہ عالم, ہم سب, یہ پورے زمین, آسمان, کائنات کا نظام, یہ اگر آج ہمیں ایک بہت ایک منظم اور ایک آرگنائز سسٹم کے طور پر نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس میں سے خالق, اس کی خلقت کو نکال کے باہر کر دیں, اس کی کریشن کو نکال کے. یعنی جیسے میں یوں کہوں اپنے زبان میں, شاید اپنی ماڈرن لینگویج میں, کہ دا مین پرابلم آف ایوری فیلڈ آف نالج مسٹ بی کریشن اینڈ ناٹ دا فزیکل ورلڈ, ناٹ دا فزکس. یعنی جیسے مثال کے طور پر میں خود اپنی ذات کو لے لوں, میں اس بات کو بھول جاؤں کہ مجھے کس نے بنایا, میں کیسے خلق ہوا, میری تخلیق کیسے ہوئی, میں صرف اپنے اس جسم کو دیکھوں اور اس کے بارے میں ہر بات سوچوں اور اس کے تمام ریکوائرمنٹس کو پورا کرنے میں لگا رہا ہوں. ज़्यादातर लोग यही काम कर रहे हैं ना, उनकी ज़िंदगियों में इस्लाम और रूहानियत आती है कहीं भी, कहीं से भी। आपके लिए इस्लाम की पहली बुनियाद यह है कि मैं मखलूक हूँ, मुझे किसी ने खल्क किया है, कोई मेरा खालिक है और मुझे उससे कनेक्ट होना चाहिए। यानी अगर आप एक लॉजिकल बात सोचें कि भाई जिसने मुझे पैदा किया है, क्या मुझे दिल नहीं चाहता कि मैं कभी उसको देखूं, उसके पास जाऊं, उससे बात करूं, उससे कम्युनिकेट करूं? मतलब ये एक नॉर्मल और नेचुरल अर्ज नहीं है कि फॉर एग्जांपल मुझे नमाज पढ़ते हुए, नमाज के लिए खड़ा होते हुए, मुझे मेरा दिल सबसे ज़्यादा ये चीज़ इसी चीज़ को चाहता है कि मैं इस बात को सोचता हूँ कि भाई जिसने मुझे खल्क किया, जिसने मेरे बारे में सोचा, जिसने मेरे आइडिया को क्रिएट किया, जिसने मेरे मुझे एक वजूद दिया, मैं सबसे ज़्यादा उससे मिलने की ख्वाहिश रखता हूँ और सबसे ज़्यादा उसको पाना चाहता हूँ कि मैं देखूँ कौन है वो। तो ये फर्स्ट थिंग इज़ दिस, जब तक माशरे के या दानिशगाह के किसी भी जगह के बुनियाद इस पर नहीं होगी, क्रिएशन पर, ना कि फिजिक्स पे, ठीक है? यानी कि आपने ये सब, शैतान का धंधा क्या है कि तखलीक को हटा दिया, अब किसी भी तरीके से तुम पैदा हो गए, अब इससे कोई पर्पज नहीं है कि तुम जमीन से हो गए हो या आसमान से गिरे हो या कहीं से आ गए हो, ये बात नहीं है। बस हाँ, ये तुम्हारा जिस्म है, ये तुम्हारी तबीयत है, बस इसके फला फला तकाजे हैं, उसको पूरा करो, ठीक है? ये पहली जड़ मुसीबत गुमराही की यहाँ पर, यहाँ से शुरू होती है। स्टेप नंबर वन कि अगर आप अपने माशरे को या अपने लोगों को इस्लामी और रूहानी बनाना चाहते हैं तो उनकी तवज्जो तबीयत से हटाकर खिलकत पे मबजूल करें। यानी तुम्हारा कोई खालिक है, आलम का खालिक है, आलम क्रिएट किया गया है, ये खुद ब खुद वजूद में नहीं आया, ये जिस तरीके से जिंदा है, जिस तरीके से चल रहा है, ये खुद से नहीं चल सकता, ये खुद से बाकी नहीं रह सकता। इसको, इस निज़ाम को चलाने के लिए, इसको बाकी रखने के लिए हर आन किसी की तवज्जो की ज़रूरत है। जब फोकस थिंकिंग इस तरफ शिफ्ट होगा तब हमारे लिए वो रूहानियत की जो पहली सीढ़ी या पहली किरण है ना, फिर वो नमूदार होगी, वरना हम इसी तरीके से चलते रहेंगे कि हाँ मेरे जिस्म के फला फला तकाजे, मेरे जिस्म का तकाजा है कि मैं आराम से रहूं तो मुझे एक अच्छा घर चाहिए, मुझे अच्छी सवारी चाहिए, अच्छा बिस्तर चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, और हाँ, और उसके साथ ये भी है कि मुझे इबादत भी करनी चाहिए, और ये भी, वो उसका भी बेसिक रीज़न जो है वो हमारा एक मुसलमान ख़ानदान में पैदा होना है, उसके पीछे भी कोई फ़लसफ़ा और नज़रिया नहीं है हमारी इबादत के पीछे, बल्कि इसलिए कि हाँ हमारे वालदैन ने हमको इस बात पे परसिस्ट किया, या हमने अपने माशरे में मौलानाओं से ये बात सुन ली, या हम समहाउ कन्विंस हैं अबाउट जन्नत एंड जहन्नम, तो इस वजह से मुझे ये इबादत भी अंजाम देनी चाहिए। इस तरीके से कोई इंसान और कोई माशरा इस्लामी और रूहानी नहीं बन सकता। सही बात समझ में आ रही है? एग्रीड। शिफ्ट ऑफ फोकस फ्रॉम फिजिकल वर्ल्ड, फिजिकल एग्जिस्टेंस टू क्रिएशन, कि इस बात को तस्लीम करो, सब इस बात को तस्लीम करो कि आलम का, आदम का, कायनात का खालिक है, ये सब खल्क शुदा हैं, मखलूक हैं, और मखलूक होने की हैसियत से मजबूर हैं और कमज़ोर हैं, ज़ईफ़ हैं, इनको ज़िंदा रखने के लिए, इनको चलाने के लिए एक पावर चाहिए, एक क़ुव्वत चाहिए, एक एनर्जी सोर्स चाहिए कि जहाँ से पूरे कायनात में एनर्जी फ्लो करे और उसको ज़िंदा रख रही है, ठीक है? दूसरी एक बात, दूसरी बात ये कि इन्हें खालिक के रिकॉग्निशन के बाद कि क्या जिसने मुझे खल्क किया है उसने बाहदफ खल्क किया है या बेहदफ खल्क किया है, यानी विद अ पर्पस में खल्क हुआ हूँ, विद एन ऑब्जेक्टिव खल्क हुआ हूँ, या ऐसे ही खल्क हो गया हूँ जैसे इधर उधर से घास निकल आती है, घास फूस निकल आती है, कि मेरी, यानी पहली मंजिल पर इस बात को रिकॉग्नाइज करना कि मैं मखलूक हूँ, किसी ने मुझे खल्क किया है। अभी आप ठीक है, हम इस बात को कह सकते हैं कि आप उसको नहीं पहचान पा रहे, आप उससे फेस टू फेस नहीं आ पा रहे, लेकिन कम अज़ कम आप इतना रिकग्नाइज कर रहे हैं कि मैं मखलूक हूँ और कोई मेरा खालिक है। अब दूसरी चीज़ जो इस इस्लामी और रूहानियत की तरफ इंसान को ले जाती है कि हदफ के रिकॉग्निशन, कि मैं किस लिए खल्क किया गया हूँ, क्योंकि हर क्रिएशन का एक पर्पस होता है। और यही क्रिएशन पर जोर देने की एक बहुत बड़ी वजह यह भी है, क्योंकि आप जब खाली फिजिकल वर्ल्ड की बात कर रहे होते हैं, फिजिक्स की बात कर रहे होते हैं, तो ये पर्पस ऑफ क्रिएशन उसमें से निकल जाता है, फिर वो चीज मौजू बहस ही नहीं बनती। सही। तो अगर मैं मखलूक हूं, पैदा किया गया हूं, तो क्यों पैदा किया गया हूं, मेरा हदफ क्या है, मेरा खालिक मुझसे क्या चाहता है। और ये चीज़ जाहिर है कि मैंने आपको जब शुरू में बात की थी, आपको याद होगा सूरह बकरा की इब्तदाई 5 आयतें, उसमें मैंने ये समझाने की कोशिश की थी कि ज़ालिकल किताबु ला रायबा फ़ीहि हुदन लिल्मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिलग़ैब, के पहली मंजिल पर वो गैब का शऊर है, पर युक़ीमूना अस्सलात, उससे कनेक्ट होने की तमन्ना है, एंड इस तरीके से वो सारी चीज़ें। तो हदफ को रियलाइज़ करें इंसान, कि मैं एक मकसद को लेकर पैदा हुआ हूँ, मेरी तख्लीक और खिलकत बा मकसद है, और मुझे उस मकसद की तरफ पेशकदमी करना है। ठीक है। अच्छा, तीसरे मरहले पर कि जो मेरा खालिक है और जिसने मुझे एक ऑब्जेक्टिविटी के साथ खल्क किया है, क्या वो मेरी हेल्प करेगा मकसद तक पहुंचने में, या उसने खाली ये मकसद का सारा बोझ मेरे कंधों पे डाल के छोड़ दिया। दो बातें हो सकती हैं कि जैसे आपने एक चीज़ को खल्क तो किया है, क्रिएट तो किया है कि वो एक मकसद को हासिल करे, लेकिन उसके बाद आपने कहा भाई इस तक तुम्हें पहुंचना खुद है, अब ये सारा का सारा मसला तुम्हारा है, मुझे नहीं पता ये सब चीज़ें, अब खुद जाओ अपना रास्ता तय करो। क्या जिसने मुझे खल्क किया है एक मकसद के साथ, उसने ये सारी की सारी चीज़ें मेरे कंधे पर डाल के छोड़ दिया है, या वो विलिंग है, प्रिपेयर्ड है टू गाइड मी एंड टेक मी टू माय डेस्टिनी। यानी इस मसले की रियलाइजेशन कि खुदा ने हमें खल्क किया, एक हदफ के लिए खल्क किया, और वो तमाम की तमाम चीज़ें हमको प्रोवाइड की जो हमें बआसानी उस डेस्टिनी तक पहुँचा सकें। ठीक। यानी उसमें नबी हैं, किताब हैं, इमाम हैं, अकली हिदायत है, फितरी हिदायत, सारी चीज़ें। ये है आपकी रूहानियत की बुनियाद। जब लोग इन हकायक को समझते हैं तब इस्लामी और रूहानी होते हैं। खाली ज़ाहरी तौर से नमाज रोज़ा और पर्दा करने से नहीं होता ये। ठीक। तब ये पूरा कनेक्शन जो बिल्डअप हो रहा है ना, जो रूहानियत का पूरा निज़ाम बन रहा है, वो इस चीज़ पर बन रहा है। और चौथी चीज जो बहुत बहुत अहम है, वो ये कि खुदा ने इन तमाम हकीकतों को समझने के लिए इंसान को एक हीरे जैसी दौलत दी है, हीरे से भी ज्यादा कीमती। उस दौलत का नाम है अक्ल। मैं इस जुमले को दोहराऊं, मेरा ख्याल है इसका इंपैक्ट आप इतनी जल्दी नहीं फील कर पाएंगे जो मैं कहना क्या चाह रहा हूं। इंसान ये समझता है कि हम जब किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो हम अक्ल इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं, बल्कि अक्ल के नाम से जो दौलत खुदा ने हमें दी है, जो कैपेबिलिटी खुदा ने हमें दी है, वो अक्ल इस काबिल है कि हकीकत को हमारी नज़रों के सामने आश्कार करे, हमें हकीकत तक पहुँचाए। ये सलाहियत एक अजीम नेमत की शक्ल में हर इंसान के अंदर मौजूद है, और ये बाई क्रिएशन है, ये इंसान इसको हासिल नहीं करता है। बात वाज़े हो रही है? यानी दौलत अक्ल इंसान को खुदा ने अता की है, न कि इंसान अपनी सोच के जरिए से अक्ल को हासिल करता है या फिक्र के जरिए से अक्ल को हासिल करता है, ऐसा नहीं। इस कैपेबिलिटी को जब तक हम बाकायदा यूं कह लें कि नर्चर नहीं करेंगे, यानी कि ये एक जैसे आप मैं एक और छोटी सी मिसाल दूं, हीरे की ही एक मिसाल आपके सामने रखूं कि हीरे की, सोने की, यानी कि इस किस्म की मिसालें कुरान करीम में मौजूद हैं कि सूरह रात की आयत में है कि सोने को यानी गोल्ड जो है उसको पाक करने के लिए क्या करना पड़ता है, आग में तपाना पड़ता है। ठीक है, आग में आप डालते हैं और उसको इन्हें भट्टी में, फर्नेस में डाल के काफ़ी अरसे तक उसको इसको तपाना कहते हैं। तो उससे क्या होता है कि उसके अंदर जितनी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो सब ऊपर स्लैग की शक्ल में ऊपर निकल आके तैरना शुरू हो जाती हैं मेल्ट होने के बाद, और उसको हम निकाल लेते हैं और अंदर खालिस सोना रह जाता है। इसी तरीके से हीरा जो है, हीरा केमिकल कंपोजिशन के लिहाज से कोयला है, सही है ना, कार्बन है, लेकिन जब ज़मीन की गहराइयों में तवील अरसे तक हाई टेम्परेचर और प्रेशर के अंदर ज़िंदगी गुजारता है तो ये कोयला हीरे में तब्दील हो जाता है। ये चीज़ इंसानी उस जौहर के हवाले से बहुत सही ये मिसालें सादिक आती हैं जिसे हम अक्ल कहते हैं। यानी कि ये दौलत खुदा ने हमको दी है, लेकिन इस दौलत को सही मानों में हीरा बनने के लिए क्या चाहिए, इट हैज़ टू पास थ्रू अ फेज ऑफ ट्रायल्स एंड ट्रेबुलेशंस। और अगर हम उसके अंदर पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते रहेंगे तो बेसिकली ये वही है, ट्रायल्स जो हैं वो वही प्रेशर और टेम्परेचर क्रिएट करते हैं, और अगर हम उसमें टूटेंगे नहीं, बिखरेंगे नहीं, शिकस्ता नहीं होंगे, ख़राब नहीं होंगे, तो ये जौहर अक़ल जो है ये हीरे की मानंद शफाफ हो जाएगा। या जिस तरीके से कि सोने को पाक करने के लिए आग में जलाया जाता है, तो ये ज़िंदगी के मसाइल और तकलीफ़ें वो आग है कि अगर उसको हम अच्छे तरीके से उसको रिस्पॉन्स दें तो ये जितनी इम्प्योरिटीज़ हैं फिर वो अक़ल से निकल के अलग हो जाती हैं और अक़ल खालिस हो जाती है सोने के तरीके से। तो चौथी चीज़ क्या है कि खुदा ने हम सब को एक अजीम नेमत और एक अजीम कैपेबिलिटी दी है इन तमाम हकीकतों को समझने के हवाले से। उस कैपेबिलिटी का नाम अक़ल है, जिसको बहुत सारे डिफरेंट लेवल्स पर डिफाइन किया गया है, सही है, इसकी कोई एक तारीफ नहीं है हमारे पास, इसके मुख्तलिफ लेवल्स पर मुख्तलिफ तारीफें, लेकिन अक़ल वो जौहर है, वो एसेंस है, वो मेन क्वालिटी है कि जो इंसान के अंदर अगर वाकई ज़िंदा है, मुर्दा नहीं हुई हुई, या उस पर पर्दे नहीं पड़े हुए, या उस पर कचरा नहीं पड़ा हुआ, डर्ट एंड डस्ट उस पर नहीं मली हुई, तो ये वो आईना है कि जिसमें हकीकत के पूरे रंग और पूरी शक्ल इंसान को नज़र आती है। तो अब रूहानियत तक पहुँचने के कितने अरकान हुए? पहला रुकन इस बात की रियलाइजेशन कि ये निज़ाम तख्लीक शुदा है और इसका खालिक है। दूसरी रियलाइजेशन, खल्क होने के साथ साथ इसका एक हदफ और एक ऑब्जेक्टिव है, ये बेहदफ नहीं है। तो जो भी इंसान हदफ से अपने आप को अलाइन करेगा वो हमेशा कामयाबी के रास्ते से चलेगा, जो उससे इधर उधर होगा वो प्रॉब्लम में पड़ेगा। तीसरी बात ये कि जिसने इस सबको खल्क किया है उसने हमें बना के यूं ही नहीं छोड़ दिया, बल्कि डेस्टिनी तक पहुंचने के तमाम वसाइल और असबाब भी फराहम किए हैं और वहां तक पहुंचने के लिए गाइडेंस भी मौजूद है, तो हमें चाहिए कि उससे फ़ायदा उठाएं, उसकी तरफ रुजू करें। लेकिन ये तमाम की तमाम चीज़ें कब समझ में आएंगी? जब अक्ल सही होगी। और अक्ल का मतलब इंसान की कुव्वत फिक्री नहीं है, इंसान की सोच नहीं है, बल्कि अक्ल का मतलब एक जौहर है जो हर इंसान के अंदर रख दिया गया है। और ये जौहर जब तक लालच से, हिमाकत से, मुख्तलिफ किस्म के फसादात से पाक होता है तो हमेशा हकीकत को इंसान के सामने लाता है। यानी जब हम ये बात करते हैं तज़किया नफ्स, तो तज़किया नफ्स का क्या मतलब है? तज़किया नफ्स का मतलब यही है कि अक्ल के ऊपर जितनी खराबियाँ हैं, यानी कुरान करीम ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि इन्हें क्यों समझ में नहीं आती चीज़ें, कल्ला बलराना अला कुलूबहिम मा कानू यक्सबून, हरगिज़ नहीं, इनके दिलों पर जंग है। और ये जंग क्यों आ गया इनके दिलों पर? उस कमाई की वजह से जो इन्होंने जिंदगी में हासिल की अपने हाथों से कमाई। इन्हें एक आईना है, एक आईने के ऊपर आप लाके मिट्टी कीचड़ गंदगी कालक मल दें तो आईना बेचारा क्या करेगा, और उसके बाद आईने से कहें कि यार इसमें तो कुछ नज़र ही नहीं आता, ये पता नहीं कैसा आईना है, कि इसके सामने सारी चीज़ें मौजूद हैं लेकिन ये कुछ दिखाने के काबिल ही नहीं है। ये हाल हमारा है कि कुरान जी जी इसलिए कि बेसिकली कुरान करीम की नज़र में इंसान का नफ्स और कल्ब जो है वो बेसिक मतलब सेंटर है कि जहाँ पर हर चीज़ समझ में आती है और जहाँ से हर चीज़ नज़र आती है, मतलब अक्ल की मदद है। लेकिन जैसे हम कहते हैं ना कि आप अपने हाथ पैरों की मदद से, बल्कि एक मिसाल आपको दूं कि आप जब भी एक जुमला इस्तेमाल करते हैं कि मैं देख रहा हूँ, है ना, यानी कि आप कहते हैं किताब पढ़ रहे हैं, हम कहते हैं मैं किताब पढ़ रहा हूँ, आप ये क्यों नहीं कहते कि मेरी आँख किताब पढ़ रही है, या आप कहते हैं कि मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, आप ये क्यों नहीं कहते कि मेरे कान आपकी आवाज़ सुन रहे हैं। इसलिए कि बेसिकली हम में से हर एक को इस बात का शऊर है कि मैं खुद एक, मेरी एक हकीकत है और मेरी उस हकीकत के साथ मेरे जितनी भी फैकल्टीज हैं वो लाइक पेरिफेरल्स अटैच्ड हैं। तो कान आवाज को पहुंचाने का जरिया है, सुनता मैं हूं, यानी मेरा नफ्स, यानी मैं,
तो मैं जो हूं वो
नफ्स है और कल्ब है, ठीक है। तो यानी कि जितनी भी चीज़ें इंसान हासिल करता है मुख्तलिफ फैकल्टीज़ के ज़रिए से, चाहे वो फैकल्टीज़ ज़ाहरी और मादी हों चाहे गैर मादी हों, लेकिन वो तमाम की तमाम चीज़ें पहुँचती कहाँ तक है, मैं तक पहुँचती हैं, नफ्स तक और कल्ब तक पहुँचती हैं।
तो अकल एक फैकल्टी है,
अकल एक मददगार, जी हाँ, एक ज़बरदस्त मददगार है इंसान की रूहानी एतबार से, कि जो उसे हकाएक़े बालातर यानी कि उन हकीकतों को देखने के काबिल बनाती है विच इज़ बियॉन्ड ऑब्वियस, यानी जो ज़ाहिर नहीं है। जैसे आज मिसाल के तौर पर साइंस ने जितनी तरक्की की और ये सब किया, तो ये हर चीज़ बियॉन्ड ऑब्वियस देखने की वजह से है ना, कि अगर हम इंसान भी उसी तरीके से जो नज़र आ रहा है खाली उसी को ही देखता रहता और उसी को ही हकीकत समझता रहता तो आज एक चीज़ भी ईजाद नहीं होती, ऐसा है या नहीं। इन्हें इंसान ने इस बात को रियलाइज़ किया चीज़ों को, नेचर को देखने के बाद, कि जो कुछ मुझे नज़र आ रहा है इसके पीछे भी कुछ और है, यह हकीकत इसके मावरा भी है। तब उसने उस पर तहकीक की, उसके अंदर उसकी डेप्थ में गया और वहाँ से उसने नए किस्म के उसूल अख़ज़ किए कि जिनके ज़रिए से वो काम कर सकता है कि जो मतलब उन हिडन फोर्सेज ऑफ नेचर को यूटिलाइज़ कर रही होती हैं, यह हिडन एनर्जीज़ को। तो ये कैपेबिलिटी अकल की है, ठीक है। लेकिन यहाँ इस पे देखें, मैं एक और बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि जो मैंने आपसे कहा ना कि अकल का पाक होना बहुत ज़रूरी है रूहानियत के लिए, पाक होना यानी जिस तरीके से सोने का मैल कुचैल से पाक होना, या हीरे का जो दीगर इम्प्योरिटीज़ हैं या उस निचली हालत से पाक होना, जब हमारा नफ्स और हमारी अक्ल किस चीज़ में उलझी रहती है, मादियत में उलझी रहती है, यानी कि जिसकी चार बड़ी मिसालें मैंने आपको सुनाई थी, रियाकारी खुदपसंदी और तकब्बुर और हसद, यानी कि जो चार बड़े बड़े अमराज हैं, और उसके अलावा और जिनका हमने ज़िक्र नहीं किया था, फॉर एग्ज़ाम्पल असबियत गुस्सा और इस किस्म की चीज़ें, अगर खुदा ना खास्ता अक्ल को इन मुसीबतों ने घेरा हुआ है, अकल हकीकत को देखने के बावजूद हकीकत तक नहीं पहुंचा सकती, ये वो मुसीबत है जो आज के इंसान को लाहक है। यानी आज का इंसान उमूमी तौर से, कि अब ये नहीं है कि आपको किसी की बात पर ईमान लाना पड़े, सही है ना, यानी अब हम खुद बहुत कुछ देखने के काबिल हो गए कि जो हमें उन तमाम चीज़ों की तरफ, जो मैं आपसी खिदमत में अर्ज़ कर रहा था, खिलकत हदफ और खुदा की रहनुमाई, जो हमें तीनों चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझा सकता है, यानी आज जितना साइंस ने देखा, डेवलप किया, इवन शायद मैंने आप लोगों के सामने जिक्र भी किया था क्वांटम फिजिक्स का, कि अब वो खुद इस बात को कह रहे हैं कि भाई हर तख्लीक की तह में जितना आप उतरते चले जाओ, एक इन्फिनिट ओशन ऑफ एनर्जी है जिससे सारी चीज़ें कम्युनिकेट कर रही होती हैं, और मतलब वो सारी बातें अब आपको समझ में आ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद आप उस हकीकत तक नहीं पहुंच पा रहे। यानी अकल आपको एक चीज़ दिखा रही है, लेकिन हकीकत से आप फिर भी नहीं कनेक्ट हो पा रहे देख कर भी। क्यों? इसलिए कि अकल इन फसादात से और इन इम्प्योरिटीज से पाक नहीं है। तो ये चार चीज़ें, यानी जो तीन चीज़ें, एक पहली आती है खुदा बतौर खालिक, दूसरा आता है आखिरत अगर हम दीनी इस्तेलाह में बात करें, तीसरा खुदा बतौर राज़िक और रब, चौथा सेहत अक्ल। तो आप किसी भी माशरे को इस्लामी और रूहानी बनाना चाहते हैं, आपको इन चार चीज़ों पे मेहनत करना पड़ेगी। सिर्फ इस बात के कह देने से और कर देने से कि हाँ आप ये फला काम कर लें और आप नमाज़ें पढ़ लें और दाढ़ियाँ रख लें और पर्दा कर लें और औरतें हिजाब कर लें और मर्द औरत अलग अलग हो जाएं, इससे माशरा कभी इस्लामी और रूहानी नहीं होता। और इन्हीं चीज़ों को हमें अपनी जितने भी इल्मी और तालीमी मराकज़ हैं इस पर बेस बना के चलना पड़ेगा। और आप देखें तमाम नबियों ने बेसिकली यही काम किया है। अगर आप अंबिया अलैहिस्सलाम की दावत को देखें, सब इसी तरीके से लेके चलें। यानी पहला शऊर खुदा का, कि वो खुदा, आपको शायद याद हो जब हम सूरह बकरा पे बात कर रहे थे, आयत नंबर 20 यही थी ना, या अय्युहन नास उबुदू रब्बकुम खलकाकुम अल्लज़ी खलकाकुम, याद है? यानी कि जब वो मुनाफिकीन के जिक्र के बाद कि ए इंसानों अपने रब की बंदगी करो जिसने तुमको खल्क किया और तमाम जिंदगी को खल्क की, ये असल चीज़ है। खिलकत को पहचानना, खिलकत खिलकत, न कि आलम तबीयत, क्योंकि आलम तबीयत में ये होता है कि आप उसको खुदा को आसानी से निकाल के बाहर कर सकते हैं, आखिरत को भी आसानी से निकाल के बाहर कर सकते हैं। यानी आपने आलम तबीयत पर फोकस करने का मतलब है कि बिगिनिंग आपने काट के अलग कर दी, एंड काट के अलग कर दिया, और बीच पे जो कुछ है बस आप कह रहे हैं यही यही सब कुछ है। सही? तो ये वो चीज़ है कि जिसकी हमें प्रॉब्लम है। यानी हमें प्रॉब्लम इसकी नहीं है कि हम नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, मिसाल के तौर पर हमें प्रॉब्लम इसकी नहीं है कि हम रमज़ान में रोज़े नहीं रख रहे हैं या हम हज नहीं कर रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन जो चीज़ इन इबादात में रूह फूंकती है, जो असल रूहानियत को पैदा करती है और सामने लाती है, वो गायब है। तो हम कुछ भी करते रहे, हमें वो मतलूबा नतायज कभी बरामद नहीं होंगे। सही है जी, अगर इस पर कोई बात करना चाह रहे हैं।
उस हवाले से फिर हमें जो अपना कोर्स ऑफ एक्शन डेवलप करना चाहिए, इस पर फोकस करते हुए, वो हमारे लिए फिर दस्तूर अमल को साइड में रखकर हम इन चीज़ों को देखें जो हम पिछले काफी महीने सालों से कर रहे हैं, इस तरह के लेक्चर्स हमारे हो, डिस्कशन हो, कुरान के ऊपर हमारा फोकस हो, या इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे हमें कोई मेडिटेशन भी होनी चाहिए, सोचने का टाइम मिलना चाहिए हमें, पूरा हमें कुछ
नहीं। पहली बात तो ये कि दस्तूर अमल को साइड पे रखने की ज़रूरत नहीं है, वो साथ साथ चल रहा है, वो साथ साथ चल रहा है, लेकिन ये कि मैंने साइड में रखना क्या मतलब ये होता है कि आप खाली उस पर फोकस करते रहें, उस पर फोकस करते रहें, सारा जोर दबाव उस पर डालते रहें और असल चीज़ को भूल जाएं, तब फ़ायदा नहीं होगा उस बात का। जी, और दूसरी बात क्या थी? देखिए उसके तरीके जो है हमें बता, हमें हमें तरीके उसके बता दिए गए हैं। और पहला तरीका ये होता है कि मैंने सबसे पहले कि हम खुद अपने ज़िंदगी में और अपने रूटीन में कम से कम एक अपने टाइम का ऐसा हिस्सा मुकर्रर करें कि जिसमें हम खुदा के साथ तन्हा हों और कुछ ना कुछ उसके बारे में स्पेशली, यानी कि यूँ कहें कि अपने टाइम को स्पेशली खुदा के लिए डेडिकेट करें, कुछ गौर करें, कुछ भी करें, मतलब कुरान पढ़ें, गौर करें कोई, या स्पेशली खुदा के किसी चीज़ पर अमल करें। इन्हें जैसे बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है ना कि हम कहते हैं कि भाई ये मैं काम कर रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं चाहता, फ़कत और फ़कत रज़ाए खुदा के लिए काम कर रहा हूँ। इस किस्म की कोई चीज़ दिन में शब और रोज़ में ऐसी ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि
उसमें भी ये है कि जितनी बड़ी कुर्बानी होगी,
ठीक है, मतलब हम बहुत बड़ी उसकी बात नहीं कर रहे। मिसाल के तौर पर एक जो, क्योंकि खुदा ने जो हमें निज़ाम बताया ना, उसमें ये सब चीज़ें बिल्ट इन है कि फॉर एग्जांपल सुबह की नमाज के लिए, नमाज शब के लिए उठना ही एक छोटी सी कुर्बानी है, कि हम अगर इस पर आ जाएं, इन चीज़ों को अपना लें तो बहरहाल। लेकिन उसमें एक चीज़ यह है कि इनफरादी लेवल पर अपना टाइम कुछ ना कुछ खुदा के लिए और खुसूसियत के साथ रज़ाए परवरदिगार के लिए ज़रूर डेडिकेट करें। एक दूसरी बात यह कि क्योंकि हमारे साथ इस वक्त दो प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम यह है कि हम अपने अंदर उस कैपेबिलिटी को नहीं पा रहे कि हम खुद से इन मराहिल को तय करें, और दूसरी प्रॉब्लम यह है कि हम किसी ऐसी शख्सियत से भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है कि जो हमें इस तरीके से आगे ले जा सके। तो हमें फिर उस रास्ते पर आना पड़ेगा कि जितने लोग भी मुतवज्जे हैं या इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में अहमियत दे रहे हैं, दे मस्ट जॉइन हैंड्स टुगेदर और आपस में मिलकर एक दूसरे की मदद करें खुदाई रस्तों पर आगे बढ़ने में। यानी कि वो चीज़ जो है वो एक दूसरे को अच्छी बातें सुना के भी हो सकती है, अच्छे डिस्कशंस के से भी हो सकती है, एक दूसरे की लाइफ्स में से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके भी हो सकती है, एंड सो ऑन। ठीक है, यानी कि अभी हमारे पास जो फौरी तौर पर एक बात समझ में आती है वो ये बात समझ में आती है, और फिर ये कि रफ्ता रफ्ता, और इस रास्ते पर जब हम आगे बढ़ते जाते हैं तो रफ्ता रफ्ता फिर खुदा की इनायात जब शामिल होती हैं तो फिर और भी इम्कानात और भी, मतलब कह लें कि दरवाज़े खुलते हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर होते चले जाते हैं।
इसको एक और एंगल से देखा जाए तो जो खुदा की वननेस और तौहीद है, उसको अपनी एवरी डे टू डे लाइफ में, एवरी एक्शन और एवरी थिंग वी परफॉर्म, उसमें अगर शामिल करें तो वुडंट दैट बी,
जी वही वही तो मैंने आपसे अर्ज किया ना, नहीं वही तो, नहीं नहीं मैंने ये तो आपसे अर्ज किया कि जब आप बेस करते हैं तख्लीक पर तो वो चीज़ आएगी ना सामने। यानी एक शख्स है कि जो इस तरीके से ज़िंदगी गुजार रहा है कि बस मैं हूँ और मेरी ज़िंदगी है और इसको अच्छा होना चाहिए, और एक शख्स इस सोच के साथ ज़िंदगी गुजार रहा है कि मुझे किसी ने खल्क किया है और बाहदफ खल्क किया है, तो दोनों की थिंकिंग में फ़र्क नहीं हो जाएगा, वो चीज़ ज़िंदगी में आएगी ना। क्योंकि ये चीज़ तो हम बार बार आपकी खिदमत में अर्ज़ कर चुके हैं कि तौहीद 100% अमली भी है। यानी तौहीद किसी एक आइडिया के, आइडियोलॉजी का नाम नहीं है कि जिसको हम बैठ के बहस करते रहें उस पर, बल्कि तौहीद एक नज़रिए का नाम है कि जो 100% अमली है। तो बात बिल्कुल दुरुस्त है। यानी जब हम इस चीज़ को ले आएंगे कि मैं मखलूक हूँ, मैं अब्द हूँ, कि आइमा अलैहिस्सलाम ने ना बाज़ लोगों के हवाले से वो वाक़या आपने सुना तो है कि बशर हाफ़ी वाला के जो गार में बजाना हो रहा था, सातवें इमाम वहाँ से गुजरे, कनीज बाहर आई थी, तो हाँ जी, तो आपने कहा वाकई आज़ाद ही लगता है, तो उस जुमले ने उस पर असर किया। तो ये फ़र्क है ना उसमें, सोच में, कि जब हम ये सोचते हैं मैं मखलूक हूँ, मैं अब्द हूँ, मेरा हदफ है, तो ये बेसिकली भी मैं बताऊँ हमारे साथ होता क्या है कि ये सब चीज़ें हमारे लिए महज बातों की हैसियत ज़्यादा रखती हैं। अभी इसका इम्प्रिंट मेरे दिमाग पर या मेरे दिल पर नहीं आया, यानी ये चीज़ नक्श नहीं हुई है, जिसको इमाम खुमैनी ने बहुत अच्छा एक जुमला इस्तेमाल किया है कि जब तक इंसान की मारिफत ईमान के या रियाजत के कलम से कल्ब पे नहीं लिख दी जाती, उस वक्त तक इंसान हकीकतन मोमिन हो नहीं पाता। तकरीबन मफहूम अर्ज़ कर रहा हूँ, यानी कि ये जो मारिफत, जिस चीज़ को आप पहचान रहे हैं, ये सिर्फ हमारी थॉट्स तक ना रह जाए, بلکہ ایمان کے قلم سے دل پر لکھ دی جائے. یعنی کہ جسے ہم کہیں کہ ایک چیز ایسی ہے جو مثال بھی میں آپ کو بار بار عرض کرتا رہوں کہ جیسے آپ کی اولاد کی محبت ہے. اب یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ کے دل پر لکھی ہوئی ہے. اس بارے میں آپ کو کسی تبلیغ کی ضرورت نہیں ہوتی, اس بارے میں آپ کو کسی موٹیویشن کی ضرورت نہیں ہوتی, اس کے بارے میں آپ کو کسی لیکچر کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ خود بخود اس کے تمام تقاضوں کو آٹومیٹیکلی نبھا رہے ہوتے ہیں. تو وہ بھی ہے نا, لیکن مثال کے طور پر میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہم اگر اس چیز کو سوچیں کہ جب میں کسی قابل نہیں تھا اپنی پیدائش کے وقت, تو کس نے میرے لیے مہربان پالنے والے مقرر کیے. ایون آپ اگر اپنے جسم کو اس وقت دیکھیں, اس جسم کے اندر کتنے حیران کن پروسیسز ہیں جو ہو رہے ہیں, اور سب کچھ صحیح صحیح ہو رہے ہیں. اور وہی جو بات ہے کہ جو ہم کرتے رہتے ہیں کہ وہ ایک ڈیوائن پریزنس والی, کہ ہر چیز خدا کی مرضی سے ہوتی ہے, ہر چیز میں مطلب خدا کا اذن موجود ہے ہر شے میں. تو ہم اس چیز کو دیکھیں کبھی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے کہ وہ کون ہے کہ جو یہ میرے پورے جسم کے اتنے ڈیلیکیٹ سسٹمز کو چلا رہا ہے اور صحیح چلا رہا ہے, اور مجھے کسی قسم کی پرابلم فیل نہیں ہوتی. یا اسی طریقے سے ہماری زندگیوں میں کہ کتنی ساری ایسی پرابلمز ہیں کہ جن میں دوسرے لوگ مبتلا ہیں, ان سے میں محفوظ ہوں. کتنی بیماریاں ہیں جن سے میں بچا ہوا ہوں, کتنے مصیبت اور مسائل میں کیا کیا کچھ نہیں ہو سکتا انسان کے ساتھ اس زندگی میں, اینڈ سو آن. اس طریقے سے آپ کو پھر اس حقیقت کی اپنے ارد گرد موجودگی کا احساس ہوتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ یو آلویز ریمین الوف ٹو دیٹ ریالٹی, کہ مطلب مجھے تو اسی پر ہی کبھی کبھی جھرجھری چڑھنا شروع ہو جاتی ہے کہ میں اگر اس سینس میں دیکھتا ہوں نا, یونیورسل سینس میں, کہ ہم کس جگہ پہ رہ رہے ہیں. ایک اتنا سا ڈاٹ ہے, اگر کائناتی اسکیل پہ دیکھا جائے, یونیورسل اسکیل پہ دیکھا جائے, تو زمین ایک ڈاٹ ہے. بلکہ اگر آپ ملکی وے کی پوری تصویر دیکھیں تو زمین تو نظر ہی نہیں آتی, اس میں اتنی مختصر ہے. اب یہ چیز اور یہ خلا میں ایک بے قرار فضا میں تیر رہی ہے, کچھ پتہ نہیں کہاں ہے. مجھے تو اسی کو سوچ کے عجیب سا لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ یعنی ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمیں لگ رہا ہے نا کہ سب صحیح ہے, یہ اچھا ہے. کون ہے جس نے, اور اگر یہ زمین اپنے آربٹ سے ہٹ جائے, اگر اس سے ہل جائے, اگر اس کی روٹیشن میں ذرہ برابر فرق پڑ جائے, تو سب ختم. کس نے ہے جو اس کو باندھ کے رکھا ہوا ہے, کس نے ہے جو اس نظام کو پورے مضبوطی کے ساتھ قائم کر کے رکھا ہوا ہے, اینڈ سو آن. تو آپ جب ان تمام چیزوں کو دیکھیں گے نا, مطلب سورج کے طلوع ہونے سے غروب ہونے تک جتنی بھی لائف ہے, پلانٹ, اینیمل, سیلف, اس کو آپ غور کریں گے نا, تو آپ کو اس حقیقت کے اپنے ارد گرد موجود ہونے کا احساس ہوگا, اور آپ اس بات کو فیل کر پائیں گے کہ ہم کتنا زیادہ اس سے انٹریکٹ کرتے ہیں وداؤٹ نوئنگ اٹ یا وداؤٹ ایکنالجنگ اٹ, کہ ہم ہر وقت اور ہر لحظہ اس حقیقت سے انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنی زندگی میں. کہ ایک جملہ انہوں نے ملا صدرہ کے حوالے سے ہے مشہور, کہ انہوں نے کہا کہ خدا ایک دن میں ہزاروں مطلب لاکھوں انسانوں سے مختلف زبانوں اور مختلف لغت میں ہم کلام ہوتا ہے. یعنی خدا ہم کلام ہوتا ہے, کہ کہیں آپ کو کوئی چیز لگ جاتی ہے, پتہ چل جاتی ہے, اچھا یہ بات اس نے مجھے یہ سمجھا دیا, وہ بات اس نے, یہ حقیقتاً خدا ہے جو بول رہا ہے. کہ وہ پورا نظام ہے. تو ہم جب اس طریقے سے اس ریالٹی کو پرسیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں کہ ہم تو وی آر امرسڈ ان اٹ, پھر وہ غیب والا تصور دھندلانا شروع ہو جاتا ہے, اور پھر رفتہ رفتہ انسان وہاں تک پہنچتا ہے اولیاء الہی علیہ السلام کے منزل جو ہے, کہ انہیں फिर ये सब झूठ और फेक नजर आना शुरू हो जाता है. यानी दे आर टोटली ऑन द अदर साइड कि हमारी नज़र में ये ज़िंदगी हकीकी और रियल है जिसमें हम मौजूद हैं, ये रिलेशनशिप्स, ये ताल्लुकात, ये सब कुछ, और खुदा हमारे लिए गैब और वहम है. उनके लिए एग्जैक्ट रिवर्स है कि वो जी सही है. यानी कि इसी तरीके से तरक्की है, तरक्की है. तो वही तो बात हम भी कह रहे हैं कि जब हम रूहानी और इस्लामी होने की बात कर रहे हैं, तकर्रुब की बात कर रहे हैं, मैं भी तो उसी की बात कर रहा हूं कि जब आप उस सफर पर सही रास्ते पे चलेंगे तो रफ्ता रफ्ता करके ये चीज जो है ना, ये बिल्कुल अदर वे राउंड टर्न होना शुरू हो जाएगी. सही है,
आप उस पर फोकस रहते हैं.
बहुत खुश हुई आपसे मिलके. देखें आप फिर अब अगले साल आएंगे गवर्नमेंट में.
इसीलिए तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना कि जब आपका फोकस तबीयत से हट के खिलकत पे आएगा ना और हदफ पे आएगा, तब ये रियलाइजेशन शुरू होगी. अगर हमने इन्हें हमें ये चीज़ पढ़ा दी कि ये फिजिकल वर्ल्ड है, चल रही है ये इस रूल के तहत, तो भाई रूल कहाँ से आ रहे हैं, रूल क्या चीज़ है. कि ना जब आप कह रहे हैं मिसाल के तौर पर, आपने कहा लॉ ऑफ ग्रेविटी है या फला, ये रूल है क्या, मतलब आप उसको कहें भाई मुझे रूल दिखाओ जरा, ये क्या किस किस चीज़ का नाम है ये रूल, ये लॉ ऑफ ग्रेविटी. तो बेसिकली ये पूरा का पूरा जैसे वो शैतानी और तागुती निज़ाम है कि जिसने इलाही और खुदाई हकीकतों को ट्विस्ट करके वो नई नई शक्लें दे दी हैं. सही है. तो यानी इसी चीज़ को मैं अर्ज कर रहा था कि जब तक ये नहीं होगा, जब तक ये सब चीज़ें अचीव नहीं होंगी, उस वक्त तक मसला हल नहीं होगा. जी, और उसका जी और उसका तरीका जो मैंने बताया ना, वो ये तीन है. सबसे पहली हम मखलूक हैं, हमारा खालिक है. खालिक ने मुझे बेमकसद नहीं पैदा किया, बाहदफ पैदा किया है. और अगर मैं उस हदफ से अलाइन नहीं हूँ तो मैं अपना नुकसान करूँगा बहुत ज़्यादा. और तीसरा ये कि खालिक ने खल्क करके और हदफ बना के छोड़ा नहीं है, बल्कि हदफ तक पहुँचाने के लिए तमाम रस्ते भी बताए हैं और बनाए. तो उन रस्तों पर मुझे चलना है और उन रस्तों को अडॉप्ट करना है. यानी ये चीज़ें जो है ना, ये हमारे कह लें कि बैक ऑफ माइंड या फोर ऑफ माइंड, फोर फ्रंट पे, जब तक ये चीज़ें इम्प्रिंट नहीं होंगी और हमारी प्रैक्टिकल लाइफ को डिक्टेट और गवर्न नहीं करेंगी, उस वक्त तक रूहानियत नहीं आएगी. ये असल बात है. यानी क्योंकि इस चीज़ से हम बेबहरा हैं, यानी हम अपनी नॉर्मल लाइफ को उसी तरीके से लेके चल रहे हैं, उसी फिलॉसफी पे लेके चल रहे हैं जो कि काफिर की फिलॉसफी है. इसलिए हमारी इबादत हमको कोई फायदा नहीं दे रही.
ज़ाहरी शक्ल में तो करते हैं लेकिन ये एसेंस नहीं.
जी, यानी कि उस वजह से उस इबादत के अंदर रूह नहीं पैदा हो पा रही. और जब वो रूह से खाली है तो हम समझते हैं यार इस इबादत में तो पता नहीं है भी सही या नहीं, या कोई और चीज़ है जो काम वाली है. ये जो हमें बताया गया ये असल काम वाली चीज़ नहीं है, बल्कि कोई और चीज़ है कि जो काम वाली है. तो हमें हमारे जहन में ये ख्याल पैदा होना शुरू हो जाते हैं. ठीक, ये है. और फिर आखिरी चीज़ जो बहुत अहम है वो ये कि खुदा ने हमें एक सलाहियत बर नाम बनाम अक्ल हर इंसान को दी है, जो हकाय उसे हकीकत तक पहुंचने में मदद देती है, हकीकत को उसके सामने खोलती है. लेकिन जब तक वो अक़ल उसमें मैल कुचैल है, या जब तक वो अक़ल निचली सतह पर गंदगी में फंसी हुई है, उस वक्त तक वो अक़ल हो सकता है कि हकीकत आपको समझा भी दे, लेकिन ये फ़ायदा नहीं देगी कि आप हकीकत से कनेक्ट हो जाएं.
But that's what happening. होता है बहुत, हर लम्हे होता है कि हम अक्सर कुरान की आयतें पढ़ते हैं और इस तरह फील करते हैं कि यार बहुत ही क्लियर मैसेज है और वो हो रहा है हमारे साथ होता है, बट फिर कुछ टाइम पड़ने के बाद हम फिर डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं, लेकिन वो मुसलसल किसे कहते हैं ना, एक के बाद एक कनेक्शन नहीं बढ़ पा रहा होता है.
नहीं, वो बात जो हो रही थी ना एनवायरनमेंट की, 100% है. क्योंकि अगर देखें इसकी मिसाल मैं अक्सर आप लोगों से कहता भी रहता हूँ और इसकी बहुत वाज़े दलील हमारे पास मौजूद है कि अगर खाली एक इंसान ख़ुद से नमाज रोज़ा करके या इंडिविजुअली दीन पर अमल करके कमाल तक पहुँच सकता होता तो हुकूमत इस्लामी बनाने की इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं होती, इस बात को अहमियत ही नहीं दी जाती. और आप रसूल खुदा को देखें, पहला काम जैसे ही उन्हें फुर्सत मिली है या उस वहाँ से उस शिकंजे से वो आज़ाद हुए जुल्म के, पहला काम हुकूमत इस्लामी का क़याम. हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब बनी इसराइल में भेजा गया है, पहला हुक्म हुकूमत इस्लामी का क़याम है. यानी एक ऐसा पूरा निज़ाम, एक माशरा तरतीब दो कि जहाँ पर इलाही अकदार मौजूद हों. तो इस लिहाज से ये बात तो इसमें कोई
एकदम से क्लिक किया मुझे आगा बहादुरी के लेक्चर में सुना था
जी.
वो कुछ अजीब जवाब कर रहे हैं, उन्होंने बोला कि जब जनाब ने अपने कौम को लेके उतरे समंदर के शायद के कुरान की शायद तो उन्होंने देख कर वहां पहुंचे तो वो लोग इबादत कर रहे थे बुतों की, कोई लोग वहां पर, तो उन्होंने तब मुझसे तो बोला कि भाई हमें भी कोई ऐसा बना दो फिर बुध मुझे उस तरह पकड़ लिया. मतलब इस तरह के यार तुम कैसे लोग हो कि तुमने ये नहीं देखा कि तुमने किस तरह समंदर पार करके एक कुव्वत ने वहां पहुंचा दिया है और उधर तुम पहुंचे हो, तो एनवायरनमेंट ऐसा था वहां का कि वो वहां देखकर वो उस पे अब्सॉर्ब होगा एनवायरनमेंट में, तो मतलब एनवायरनमेंट का असर बताने की कोशिश कर,
एनवायरनमेंट का असर. और दूसरा ये कि खुद उनकी अकलें पाक नहीं थी.
हां मतलब करप्शन
के इतने इतने मौजजात अपनी नजरों के सामने से देख रहे हैं और फिर भी ये हरकतें. ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको उस तरफ हरकत करना ज़रूरी है ना. यानी मिसाल के तौर पर कि जब लोगों ने, यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो थे वो बनी इसराइल को फिरौन की रेजिस्टेंस में ना लाते, या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पहले बनी इसराइल पिटे चले आ रहे थे फिरौन से, तो उससे कोई कमाल थोड़ी हासिल हो रहा था उस सख्ती से. कमाल हासिल होता है खुदा के लिए क़याम करने से. यानी एक ख़राबी है, जैसे मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ना, यहाँ आपके पास एक ख़राबी है, आपके पास 10,000 किस्म के मसाइल हैं, आप क़ुरबतन इलल्लाह क़याम कीजिए तब आपको फ़ायदा हासिल होगा, वरना खाली खुली ये माहौल माशरे की सख्ती थोड़ी आपको फ़ायदा देगी जब तक हम खुद हालत क़याम में नहीं आएंगे. निज़ाम खुदा ने ऐसे ही बनाया है कि हर जगह पर जिस जगह पर भी आप रहेंगे एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम रहेगी, मुश्किलात रहेंगी, और जब इंसान उसके मुकाबले में क़याम करता है, खड़ा होता है उन प्रॉब्लम्स के या उस धारे के अगेंस्ट, दीन को बचाने की या दीन को नाफिस करने की कोशिश करता है, उस वो चीज़ वो आग जनरेट करती है. आग जो है वो रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब वो माशरा, वो शैतानी ताकत हकीकतन नहीं है, बल्कि शैतानी ताकत के साथ जंग करने में जो मुश्किलात दरपेश होती हैं वो आग है कि जो इंसान को पाक करती है या जो सोने को प्योर बनाती है.
के ऊपर हम जब भी डिस्कशन की बात करते हैं तो आप कहते हैं कि ये डिस्कशन वाली चीज नहीं, मतलब कोई लेक्चर वाली चीज नहीं.
नहीं, मैं तौहीद के हवाले से बात करता हूं. तौहीद, हां जी 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 जी,
वो आप कहते हैं कि लेक्चर वाली चीज नहीं, इवन कि आप कहते हैं ये शायद बड़े ग्रुप डिस्कशन में भी नहीं है, तो फिर हम इसको कैसे करेंगे फिर, मतलब वन टू वन पकड़ेंगे एक दूसरे को?
नहीं, इसमें जहां तक मुझे जो महसूस हो रहा है, मुझे नहीं पता, हो सकता है कि मैं गलत ही हूँ, मैं बिल्कुल गलत ही हूँ इस बारे में,
टीचर के बगैर भी समझ में आया.
मैं इस बारे में बिल्कुल गलत हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में अब तक जितनी गुफ्तगू है इस हवाले से मैं बहुत ज़्यादा इशारे कर चुका हूँ, और यानी कि वो जो इशारे हैं या वो जो पॉइंट्स हैं वो प्रैक्टिकल लाइफ के हवाले से भी हैं, अगरचे कि शायद मुझे ये महसूस हो रहा है कि ज़्यादातर इम्प्रेशन ये है कि डिस्कशन इज़ ओवरली थ्योरेटिकल, जबकि मेरे सेंस के मुताबिक बहुत सारी प्रैक्टिकल बातें बयान हो चुकी हैं, बहुत सारी, और उसके लिए शायद एक उसको तमाम जितनी गुफ्तगू हुई है उसको रिविज़िट करना या दोबारा सुनना ज़रूरी हो कि उसमें से। नहीं, आप अगर इस हवाले से कहेंगे ना लैक ऑफ प्रैक्टिकल के जिस हवाले से हम आमतौर से समझते हैं तो बात ठीक है, लेकिन अगर आप अपनी अकल की और अपनी फिक्र की हरकत को भी एक प्रैक्टिकल समझते हैं, अगर अगर आप ये समझते हैं कि खुदा से इंसान की रूह का कनेक्शन डेवलप होना सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल बात है बाकी तमाम चीज़ों से ज़्यादा, यानी कि वो प्रैक्टिकल जो हम अपने जिस्म से करते हैं इबादत की शक्ल में, वो प्रैक्टिकल बहुत बाद में आता है, बहुत नीचे आता है, लेकिन इंसान की अक्ल का हरकत करना, इंसान की रूहानियत का हरकत में आना इंसान, तो शायद आपको बहुत सारे प्रैक्टिकल पॉइंट्स मिलेंगे। और मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि इस प्रैक्टिकल करने की ने वो प्रैक्टिकल के जो फिक्र कवर करती है उसकी मुझे इतनी ज़रूरत ही नहीं कि वो चीज़ें जो हैं वो तो ऑलरेडी मालूम है।
उसमें जब अल्लाह की प्रेजेंस को ले आएंगे इन एवरी फैकल्टी इन एवरी
जी, यानी कि जो तीन चीजें हमने बयान की कम से कम ये कि खालिक खुदा की खालिकियत का एहसास हो, हदफ हमारे सामने हो, हदफ से अलाइनमेंट की अहमियत हमारे सामने हो, और फिर खुदा की राज़िकियत और रुबूबियत टूवर्ड्स हदफ, ये मिनिमम तौहीद है।
जी पर हमें होमवर्क मिले ना, मतलब इन सेंस में कि हमारे पूछताछ हो कि हमें ये लेक्चर में करना है, ये डिस्कस करना है, आप कुछ पॉइंट्स बताएंगे, मतलब हम दो हफ्ते के बाद मिलते हैं एंड वी जस्ट लॉस्ट इट।
ये बात अलग है।
मेरे ऑफिस के एनवायरनमेंट में वी आर टास्क ओरिएंटेड इन प्रैक्टिकल टर्म्स, बट इस दिन में हम लोग टास्क ओरिएंटेड क्यों नहीं हो रहे हैं?
लेकिन इसमें देखें, इसमें जो अगर मैं बात करूं कि ये चीज जो है ना, ये मेरी तरफ से होना बहुत मुश्किल है।
ये नहीं,
मैं ये बात कह रहा हूँ कि देखें होता क्या है हमेशा कि सिखाने के हवाले से, ये ख़ास तौर से उन चीज़ों में सिखाने के हवाले से कि जो जस्ट एक ऐसे उलूम नहीं होते, यानी कि जो टास्क ओरिएंटेड हो, हकीकतन टास्क ओरिएंटेड नहीं होते, बल्कि ये डिपेंड करते हैं इन अ सेंस इंटरेक्शन पे, यानी कि जो सुन रहा है, यानी हमने एक चीज़ भेजी आपकी तरफ, अब आपकी तरफ से एक चीज़ वापस हमारे पास आएगी, और बेस्ड ऑन दैट गेज, यानी उसको गेज करने के बाद फिर एक और चीज़ आएगी एंड सो ऑन, और फिर ये सफ़र जो मैंने कहा था वो स्पायरल वाला वो चलता रहता है। हाँ, तो इसमें या तो हम फिर ये, क्योंकि जो एक प्रॉब्लम आ रही है ना वो यही आ रही है कि अगर
प्रेजेंटेशन जो आपने दी थी ना भाई, इतना पोटेंशियल है ना, अगर आप उसको दोबारा देखें ना प्रेजेंटेशन को, इट्स माइंड बॉगलिंग। मैंने आपको दोबारा भेजने है, मैंने ना चेंजेस करके उसमें ना हिंदी लिख, वो इतना बड़ा होमवर्क है ना लोगों के लिए, मैं लिटरली बता रहा हूँ कि उसको सिर्फ पढ़ लेना हर स्लाइड के ऊपर। आपने क्या सोचा? बस सिंपल सी सवाल है ना, कल आएगा सोचना पहली स्लाइड के ऊपर आपने क्या सोचा, दूसरी स्लाइड पर आपने क्या सोचा, सिंपल रहता है।
नहीं, लेकिन इसमें देखें मुझे ये बात बताएं कि मैं इसमें ये बात है कि अब आप मेरी पोजीशन पर रख के सोचें कि अगर मिसाल के तौर पर मैं इस चीज़ को बाकायदा मैंडेटरी करूं और रिस्पांस ना मिले कुछ भी, तो मेरी पोजीशन क्या होगी? क्या मैं किसी हवाले से फोर्स करने का अख्तियार रखता हूँ? आई थिंक नॉट, फोर्स करने का अख्तियार नहीं रखता. मुझे एक बात ये समझ में आती है कि अगर मैं इस अप्रोच को लेके चलूँगा तो लोग जो कुछ सुन रहे हैं उससे भी जाएंगे. यानी अगर अभी 5% एब्जॉर्ब कर रहे हैं ना, उसको भी ख़त्म हो जाएगा सिर्फ इस वजह से कि हाँ भाई अब यहाँ तो जाओ तो वो क्लासरूम एनवायरनमेंट बन जाता है, तो ये हो जाता है, तो हमें जो है वो ये कहा जाता है. ये एक मेरे जहन में एक रुकावट है. और इसमें दूसरा ये कि जो करना चाह रहा है वो करके आए, मैं हाजिर हूँ. वो नहीं हो पा रहा ना. तो अब उसको क्या करें? तो यानी कि लेकिन अगर कोई भी इस तरीके से आगे बढ़ना चाह रहा है, मैं हाजिर हूँ. अलग से टाइम के लिए भी हाजिर हूँ.